पदम गिरिवर्म हो राधिका माधवासम भक्तो यस्य प्रसिद्धि कृपया श्री गुरु सम वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तिते गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः भक्त्यापि हीनापराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा यं प्राप्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति श्रीकृष्णाय राधे तं नमामि। अपनी मैया को श्रीमद् भागवत और विविध पुराणों से जितने रसयुक्त और अच्छे श्लोक हैं उनका संग्रह कर सिद्धांतों का सार भजन का सार ये बतला रहे हैं। जिसमें उन्होंने कल बतलाया ये श्लोक इत्थं सतां ब्रह्म सुखां कि हम संसार के जितने भी जीव हैं जरण मरण और चिताप के में दग्ध हो गए। इसका कारण यह है कि हम भगवान के दास दासी हैं, उनके अंश हैं। जब तक उनसे हम नहीं मिलेंगे सुख और शांति जगत में संभव पड़ेंगे। श्रीमद् भागवत का यथार्थ रूप में श्रवण करने से हम अपने स्वरूप को भगवान के स्वरूप को जान करके शुद्ध रूप में भजन कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में यह बतलाया गया ये कृष्ण जगत के सृष्टि प्रलय और ध्वंस करने वाले ईश्वरों से भी ईश्वर केवल नहीं है। महाभारत युद्ध में लड़कर लाखों करोड़ों लोगों का ध्वंस करा दिया, यदुवंशियों का भी ध्वंस करा दिया, यही कृष्ण का स्वरूप नहीं है। यह स्वरूप नहीं है, यह उनका कुछ बाहरी स्वरूप है। कृष्ण अरे रसिक है, यहां तक कि थोड़ी भी कोई सेवा कर दे तो उसके बसीभूत हो जाते हैं, उनके ऋणी बन जाते हैं। ऐसा कोई गुण नहीं है जो उनमें नहीं है, बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े उदार हैं। जो रामचंद्र जी की लीला में मर्यादा की स्थापन करने के लिए सीता जी को आजीवन वनवास दिया, वो तो उनकी एक लीला मात्र थी जगत के शिक्षा के लिए। वही कृष्ण कृष्ण रूप में प्रेम के पाले पढ़कर गोपियों के चरण पकड़ते हैं, शीश रख देते हैं और कहते हैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। कान पकड़ते कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, तुम लोग क्षमा करो, न पा रहे हम निर्वर्त से। इसलिए कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, उनके लीलाओं पर एक विहंगम दृष्टि डालने से साधारण एक श्रद्धालु व्यक्ति इन चीजों को समझ सकता है। इसलिए इन चीजों को समझने के लिए कुछ अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी आए, महाप्रभु जी ने कृष्ण की ये बदान्यता, आराधा तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, जीव का तत्व क्या है, ये सब बतलाया। बतला करके यहाँ पर बतला रहे हैं, पिछले श्लोक में जो बतलाया इत्थम ब्रह्म सुखानुभूत्या, अर्थात मैंने कल इसकी विस्तृत व्याख्या की। जो ब्रह्मवादी लोग हैं, योगी लोग हैं, जिनको ब्रह्म को आनंद स्वरूप देखते हैं, और जिनको कर्मी लोग साधारण एक नर बालक समझते हैं, और जो भक्तों के लिए पर देवता स्वरूप हैं, अपने बड़े प्रिय बंधु हैं, और उसकी तरह तरह से व्याख्या करके बतलाया। सखाओं का तो यहाँ उपलक्षण मात्र है, ये गोपियों पर लेकर के घट रहते हैं, गोपियों के ये पर देवता है, इस रूप में ले गए। हम लोगों को इस कृष्ण से संबंध रख के यदि सुखी और शांति होना चाहते हैं तो इन चीजों को अपने जीवन में उतारना है। कहां से उतारेंगे? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आई थिंक दैट एनी वन कैन एक्सप्लेन आफ्टर माई क्लासेस, बिकॉज इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी माई मूड विल बी सम वॉट हियर एंड देयर एंड आई विल बी टायर्ड। एनी हाउ, तो सबसे पहले घर से आरंभ करें, जीवन को निर्मल रखिए। कैसे निर्मल रखें? खान पान के द्वारा भी, जो भक्ति में निषिद्ध है उनको दूर रखें, और ऐसा कोई कार्य न किया जाए जो हृदय में अशांति हो। यहाँ पर रामचंद्र जी का कृष्ण इत्यादि के लीलाओं को लेकर के देखिए, रामचंद्र जी के प्रति सीता जी कितनी अर्पित हैं, और राम भी इनके प्रति अर्पित हैं। ऐसे हम संसार में रहते हुए अपने पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति उसी प्रकार से समर्पित, दोनों एक मित्र की भांति रहेंगे। ये नहीं कि वो स्त्री मेरी दासी है, हमारे कने करता चल, अब मैं कुछ परवाह नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। राधिका जी अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देती, और कृष्ण अपने हृदय का सारा प्रेम लेकर उनके चरणों के नख की कांति की निराजन करते हैं। ऐसा यदि संसार को सुखी रह करके और भजन करना चाहता, यह घर से आरंभ। पुत्र का पालन पोषण करेंगे किस रूप में? भगवान का सेवक। बड़ा हो जाए यदि 18 वर्ष से ऊपर का तो मित्रवत व्यवहार, उसे पुत्र मत मानो। कन्या के लिए भी यही बात, और इस प्रकार से रह करके यहां तक कि यदि कोई भगवान भी बेटा नहीं मानता है, या अपना बड़ा भाई या कोई नहीं मानता है, परमार्थिक संबंध मत रखो, किंतु व्यवहारिक ठीक रखो। यहां तक ही ऐसे समझो, यदि कोई अद्वैतवादी भी आ जाए जो भगवान को निराकार निर्विशेष निरंजन मानता है, तो भी घर पर आने पर उसका यथोचित आदर करो अतिथि के लिए। प्रभुपाद इसलिए एक बार अपने सेवकों पर बिगड़ गए, उन्होंने उसको निकाल दिया। अरे ये कहे अतिथि के रूप में उसका आदर, प्रेम से ना करो तो अपना कर्तव्य से तो करो। तो इसलिए अपने घर में रहते हुए पत्नी को यथावत आदर देते हुए अपना आधा अंग मान करके पुत्र को भी वैसे ही, और पुत्र भी पिता के प्रति वैसी रूप में, यदि भजन परायण पिताजी हैं तो उनको उसी रूप में आदर करें। इस प्रकार से परस्पर भगवान के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रीति होगी तब भगवान का भजन ये सहज होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए इन चीजों को ख्याल रखना चाहिए। कभी जीव, किसी भी जीव के साथ में दुर्व्यवहार मत करो। डोंट ट्राई टू गिव सफरिंग वरीज टू अदर जीव, एनी जीव, बिकॉज ऑल जीव आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण एंड कृष्ण इज एवरीवेयर। सो डोंट डिस्टर्ब एनीवन। यदि आप भगवान का भजन कर सकते इस रूप में रह करके भगवान का भजन और ये सब चिंताएं करें, इसलिए उन सखाओं का कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है जो ऐसे पर ब्रह्म कृष्ण के साथ में, जो गोपियों के भी प्राण प्रियतम हैं। नरदारक इत्यादि शब्द के द्वारा ये दिखलाया, प्रेम के द्वारा सबके चित्त को द्रवित कर देते हैं, इसलिए नरदारक हैं। ऐसे कृष्ण के साथ में ये विहार कर रहे हैं, इनके सौभाग्य की महिमा कितनी कही जाए। अब वो कह रहे हैं, जतपाद पांथुर बहु जन्म कृच्छतो हितात्म भी योगी अपि अलब्ध स एव जद्रिक विषय स्वयं स्थित किं वर्ण्यते दिष्ट महो ब्रजौकसाम। महो ब्रजौकसाम, ये ब्रज के जो बालक हैं, ब्रज के रहने वाले जो हैं, इनकी सौभाग्य की महिमा क्या कही जाए, कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्यों नहीं वर्णन कर सकता? रहने दो जो उनके साथ में सखा लोग विहार करते हैं, ये तो बहुत ऊंची बात है। साधारण नियम ये होता है, किसी की जब हम प्रशंसा करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ में चलते हैं, और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ ना रहे, पहले विहार का वर्णन करके उनके सौभाग्य का वर्णन कर रहे, और अब कह रहे हैं यतपाद पांशु बहु जन्म कृच्छतो धृतात्म भी योग भी अप्यलभ्य। जतपाद पांशु, जिनके चरण कमल की जो रज है, एक पांशु एक वचन है, एक चरण रेणु भी बहुत जन्मों के कठोर कठोर क्लिष्ट क्लिष्ट साधनाओं के द्वारा भी धृत आत्मा, आत्मा पर संयम करने वाले, आत्मा की अनुभूति रखने वाले बड़े बड़े योगी सूर्य भी अलभ्य है, नहीं मिलती चरण से, कभी संभव नहीं है वो चरण धूली। और फिर बतला रहे हैं कैसी चरण धूली, यद पाद पांशु, कृष्ण के चरणों में जो संलग्न धूली है, अथवा श्री कृष्ण ने कहीं भी अपने चरण रखे और उसके नीचे जो धूली है जिस पर उनके चरणों का छाप, उसकी एक कोई भी धूली, अथवा कहीं से आंधी तूफान या हवा के झोंके से कोई भी धूली उनके चरणों में संलग्न गई, उसका भी एक कणा ऐसे बड़े बड़े योगी के लिए अलग है, कभी नहीं मिलती। और वो कृष्ण के साथ में बिहार की तो बात किया, जो बिहार कर रहे हैं वही नहीं, अरे उनके साथ में ये खेल धूल करते हैं, यह सराहने दो उस कृष्ण की चरण धूली को, एक भी इन तीन प्रकार की जो चरण की धूली बतलाया योगियों के लिए अलग है। और कृष्ण स्वरूप से आनंद चित घन होकर के भी उनके साथ में बिहार कर रहे हैं, ये देखो तो कितना सौभाग्य। कौन योगी? सनंदन, सनक सनंदन सनातन संस्मार। नारद जी कृष्ण के साथ में विहार किए हैं, यदि विहार किए हैं तो किस रूप में किए हैं? मधुमंगल के रूप में किया, ये तो संभव हो, उस रूप से नहीं कर सकते। या इसको हम लोग इस रूप में कह सकते हैं कि कि मधुमंगल ही उनका अपना यथार्थ स्वरूप है और नर का यह जो रूप है उनका यह प्रकाश है। आया समझ में? क्योंकि ये ब्रज संबंधी ये रूप है। नारद को वह सौभाग्य नहीं ये कृष्ण से लड़ फिर सकें, उनके चरणों उनके सिंह का आलिंगन कर सके, उनके कंधे पर बैठ जाए, अपने कंधे में बैठ जाए ये नारद जी। इसलिए इस लालसा को पूर्ण नहीं कर सके नारद के रूप में, उनकी सेवा करने के लिए नारद जी को मधुमंगल जी ने अपने स्वरूप से प्रकाशित किया, इसको ले लिया। इसलिए इन लोगों का इतना सौभाग्य है, ये धूल नहीं चाहते। आप कृष्ण क्या करते हैं, धूल लेकर के इनके कंधे पर रगड़ते हैं और कहते हैं नहीं भैया, और जोर से दे रहे हैं। योगियों के लिए संभव है, उनका दर्शन भी संभव है, नहीं संभव है इसलिए कह रहे हैं। अथवा ये भी बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, बड़े धुरंधर बड़े अंतर में प्रवेश करके इन चीजों को, इसके भीतर की जो बातें हैं इसको प्रकाश कर रहे हैं। यदि कृष्ण कदंब पर चढ़ते हैं, कदंब वृक्ष के ऊपर, तमाल वृक्ष के ऊपर, अपने शाखाओं से खेलने के लिए, और कृष्ण की चरण धूली लग गई कदंब में ना, वो भी योगियों के लिए अलभ्य है, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ये कौन से लाखों जन्म तक ध्यान में समाधिस्थ होकर चित्त को समाहित कर अष्टांग योग के द्वारा अथवा एक अंगूठे पर हाथ के ऊपर में पैर खड़ा करके लाखों बरस तक हवा पी करके उसको भी बंद कर दिया, समाधि में भी उसकी चरण की धूली को नहीं पा। सनातन गोस्वामी जी तो यहां तक करें, कदंब वृक्ष जो है उसमें से सूर्य की किरणें छेद के रूप में आती है, जैसे कि घर में गवाक्ष में से वो आती है, तो उन पेड़ों की छाया से गुजरती हुई वो किरणें सूर्य की आ रही, और उसमें चिक्ति करने वाली लाखों परमाणु हैं धूल के, जो कि वृंदावन की भूमि में पड़ते हैं, उसकी धूली को स्पर्श करते हैं। उन किरणों के अंदर में जो चमकने वाली एक त्रस रेणु है वो भी योगियों के लिए अलग है, और इन सखाओं के लिए ब्रजवासी कोई भी मयूर के लिए, कोयल के लिए, मृगी के लिए, वहां के धेनुओं के लिए, किसी के लिए अलग है। वो साक्षात कृष्ण देने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि काली ब्रज में आया, ब्रज में कुछ दिन यमुना का सेवन किया बुरे रूप में या जैसे रूप में, और कृष्ण जबरदस्ती कूद कर उसके फेटों से निकलकर उसके सिर पर चढ़ करके जबरदस्ती सिर पर धूली दे रहे। इसे नाग पत्नियां वो वंदना में कहती हैं, और इनका क्या सौभाग्य जो कुछ भी तपस्या नहीं की, कुछ नहीं की, अहैतिक रूप में काली के सिर पर नहीं चाहता है और जोर से दे रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं इसलिए कदंब इत्यादि के पेड़ों से गुजरने वाली किरणों में जो झलक झलकती हैं वो उसको भी योगी लोग एक भी कणा स्पर्श नहीं कर सकते, अथवा ऐसे जो कृष्ण की चरण की जो धूली है जो वृंदावन में है सर्वत्र ही है, कोई भी ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रत धारण करके जितेंद्रीय होकर के सप्ताह में निरंतर हवा पान करने वाले भी योगी लोग भी बहुत जन्म में कठोर साधन करके भी उसको लाभ कर नहीं समझते। आज तक ऐसा कोई दृष्टांत नहीं जो पाया, और इन ब्रजवासियों के लिए ब्रजौकसाम सहज रूप में अनायास रूप में कृष्ण नहीं चाहने, ये लोग नहीं चाहने पर भी जोर करके दे देते हैं, वो जो रूप कृष्ण का है सच्चिदानंद घन उससे इनका आलिंगन करके अपने को कृतार्थ समझते हैं कृष्ण, कैसा उनका सौभाग्य। शब्द है ब्रजौकसाम न दृश्यम महो ब्रजौकसाम, ब्रजौकसाम माने क्या, ब्रज के रहने वाले। सखाओं का ये प्रसंग चल रहा है इसलिए इसको उस रूप में प्रसंग में सखा के लिए तो ये कहा, किंतु इसको समझो जो ब्रज के रहने वाले यहाँ तक सांप बिच्छू बाघ बाघ भालू तरह से ही यहाँ तक पेड़ पौधे गुल्म लता सबके लिए यहाँ का, इसलिए ओ भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। यहाँ पर और भी बतलाएंगे, देखो सच्चिदानंद घन मूर्ति है, विष्णु मतलब विष्णु उनके अंश के कला है, इसलिए विष्णु रूप में नहीं कर्णाधिशाही रूप में नहीं, यहाँ तक कि नारायण के रूप में भी नहीं। नारायण कौन है, उनके वैभव उस रूप में नहीं। श्री रामचंद्र जी ये कौन है, राम नृसिंह ये परावस्थ रूप हैं, इनके लिए भी मत कहो, स्वयं इन सब के जो मूल अंशी हैं सर्व कारण कारण है वो जो कृष्ण है, वो कृष्ण की धूली की बात कर रहे हैं। इसलिए सखा लोग को उस रूप में दृष्टम हो वो सर्वानंदमय घन रूप सखाओं के सामने प्रकट करते हैं, कब चलते फिरते उठते बैठते खाते एक साथ में रहते हैं, कितना सौभाग्य इनका, किसी योगी का ऐसा सौभाग्य होगा, ऐसा सौभाग्य नहीं होगा। और फिर कहते हैं इसलिए ये कृष्ण भगवान गोप बालकों के नेत्रों के सामने में स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कभी भी इनको विरह का ताप नहीं होना पड़ता। गोपियों का कुछ हुआ किंतु सखा लोग मथुरा तक आए, इसलिए स्थिर भाव से इनको दर्शन दे रहे हैं। उच्चारण धूलि की तबाही छोड़ो, किसी समय किसी प्रकार से नेत्र पथ से कभी ओझल नहीं होते इन सखाओं को, खाते समय भी मधुमंगल क्या करते हैं, खाते समय में कृष्ण का कुछ ले लेंगे, जसोदा के और ले आओ, कृष्ण देखो तो ये पक्षी को या बंदर आया और कृष्ण उधर देखा और लपट करके ले लिया या अपना दे दिया, देखो तो कृष्ण कुछ खा नहीं सकता है ये पेट रोगी है, मैया हमारे लिए तुम लाओ। इस तरह से कितने रसपूर्वक भोजन करते हैं कराते हैं सखाओं के साथ में, इसलिए इनके सौभाग्य की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोगों का भी सौभाग्य कम मत समझिए, योगियों से भी कोटि गुण हम लोगों का श्रेष्ठ सौभाग्य है, केवल महाप्रभु जी की धारा में आकर और केवल नाम संकीर्तन करने से इस मथुरा धाम में और वृंदावन में नंदगांव बरसाना रासलीला स्थली बंसी भट्ट इत्यादि में वो धूली है कि नहीं, आज अनायास ही मिल रहा है, ये कितने बड़े भारी शुभ। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव द डस्ट ऑफ कृष्ण लोटस फेट, इफ यू डोंट वांट बट वी आर वॉकिंग ऑन दिस इन ब्रजभूमि एवरीवेयर द सेम डस्ट ऑफ 5000 ईयर्स बिफोर इज स्टिल हियर एंड देयर, तो हाउ मच वी आर लकी, कैसे हम लोग सौभाग्यवान हैं। अथवा और कह रहे हैं यह जो सौभाग्य है किम वर्णते अहो ब्रजऊ कसाम, उनका सौभाग्य जो वर्णन कर रहे हैं, क्या ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? पूर्व जन्म के कर्मों का फल नहीं, तपस्या का फल, व्रत का फल, किसी तीर्थ में स्नान करने का फल कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो ये क्या फल है? पूर्व जन्म का फल से क्या होगा? पुण्य से धन धान्य में पूर्ण होगा, विद्या आएगी, परिवार सुखी परिवार मिल सकता है, ये तो हो सकता है। किंतु कृष्ण के चरणों में इतनी भी भक्ति नहीं आ सकती। ये कैसे आएगी? किसी भक्तों की कृपा से या भगवान की कृपा से। इसलिए इनका यह स्वरूप या जो सौभाग्य है किसी पूर्व जन्म के कर्म से नहीं, ये तो भगवान की हैत की कृपा से या भक्तों की कृपा से। विशेष करके इनका यह सौभाग्य किसी पूर्व जन्म की कृपा से या भगवान की कृपा से भी नहीं, वो तो कृष्ण ही है। ऐसे समझ कृष्ण का काय व्यूह ये सखा लोग हैं। अपने आनंद को आस्वादन करने के लिए अपने ही आप इन सखाओं के रूप में बदले हुए हैं, इस रूप में समझो, कहीं मायावाद का दोष ना आ जाए, इसलिए इसमें भी सावधान रहो। सभी लोग ऐसा नहीं है, काय व्यूह विशेष विशेष वो लोग हैं। अथवा भागधेय उत्सव, पूर्व पूर्व जन्म से ही नित्य काल से ही उनके सखा ये लोग हैं, इसलिए भागधेय उत्सव। नेत्रोत्सव माने क्या होता है? नैनों का उत्सव। क्या नैनों का उत्सव है? कृष्ण का दर्शन, उनके परिकरों का दर्शन, यही नेत्र, भगवत भक्तों का दर्शन, ये नेत्रोत्सव है। तो इनका भाग्य का उत्सव क्या है? कृष्ण के सखा साथ में सब समय विहार करते हैं, इसलिए इनका इतना बड़ा भारी सौभाग्य है। अथवा अब इसको पद छेद करके बतला रहे हैं, वर्ण्यते दृष्टमहो, इसको ऐसे ले लो, ते के बाद में अ है, तो अदृष्टम मह, अदृष्ट मह, अर्थात मह माने महोत्सव, अदृष्ट माने ऐसा कहीं भी दृष्ट महोत्सव देखा नहीं गया, किसी भी लीला में, राम के लीला में, नृसिंह के लीला में, और कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया। कितना सौभाग्य अपने परिकरों को जो दिया, यहां तक जो लीला का चिंतन करता है, जो श्रवण करता है, इसके लिए भी उसको ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, दूसरों को, योगियों को नहीं, तपस्या से नहीं, और किसी भी चीज से नहीं। अथवा फिर बतला रहे हैं, अथवा अदृष्ट पद का आकार विश्लेषण से अ, अदृष्ट मह, तीन भाग कर दो। अ माने नहीं, दृष्ट कहीं भी आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जाता, मह ऐसा महोत्सव, नेत्रों का महोत्सव, ये कृष्ण का इतना सुंदर रूप, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी कहीं नहीं देखी जाती। और सखाओं को बिना चाहे घर पर कृष्ण वो लोग हैं, उठ करके कृष्ण उनके घर में जा करके उनके पलंग पर सो, अरे अभी सो रहा है उठो, आलिंगन करके उसे उठा दिया, दधिल लूटने के लिए घरों घरों में प्रवेश किया उनको साथ में, गाय बछड़ों को चराने के लिए उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं, ऐसा सौभाग्य कहां हो। इसलिए कहते हैं ये पूर्व जन्म के, ये भक्ति है। भक्ति मैंने एक साधन भक्ति होती है, यहां साधन भक्ति नहीं, ये साधन भक्ति का फल नहीं बतला रहे, ये तो सिद्ध भक्ति, प्रेम प्रेमा भक्ति है, ये भगवत कृपा से दूसरों को मिलती है, इनको भी भगवत कृपा की जरूरत नहीं, वो स्वयं सिद्ध है, स्वाभाविक है उन लोगों के लिए। ओ ये कह रहे हैं, पूर्व में भगवान के सहित गोपालकों का बिहार महोत्सव देख करके सुखदेव गोस्वामी उसमें विभावित होकर इसके वर्णन कर रहे हैं। किंतु और एक बात कह रहे हैं, देखो इनकी सौभाग्य की बात कर रहा है, ब्रजोक्षम माने क्या होगा? नंद बाबा, यशोदा, उनकी सहेलियां और जितनी प्रकार की गोपियां हैं, किशोरियां हैं, सबको अब ले। अब सखाओं का जो बिहार महोत्सव कृष्ण के साथ में, और यशोदा मैया का लालन पालन युक्त जो प्रेम है, उनसे तुलना करो तो किसकी तुलना में ऊपर उड़ जाएंगे? नंद बाबा यशोदा का प्यार है ना, उसमें ममता अधिक है। और यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को वो ताड़न भी कर सकती हैं, उनको बांध सकते हैं, सखा लोग ऐसा नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते प्रेम से, किंतु यशोदा मैया ऐसा शासन कर सकती हैं। कृष्ण रोने लगेंगे भी, किंतु और तुलना करके आगे बढ़ जाइए गोप कुमारियों का, इनका कृष्ण के साथ में कैसा प्यार है। श्रीमती राधिका जी अंतर ध्यान होकर के रास्ते आगे आगे चल रही, और कृष्ण क्या कर रहे, पीछे पीछे चल रहे, बंसी में मधुर ध्वनि करते हैं, क्या करते हैं, राधे 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 करते हैं। सखाओं के साथ में तुलना होगा नहीं होगा, इसलिए कहते मैं इन चीजों का वर्णन मैं क्या करूं, मेरे द्वारा संभव नहीं है, इसलिए विभावित हो जाते हैं। अब यहाँ पर गोपियों के भाव में विभावित होकर के सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं मेरे लिए इसका वर्णन करना संभव, इसलिए दृष्टम अहो के लिए कह रहे हैं। अहो आनंद में सुखदेव गोस्वामी जी उसमें तदात्म हो जाते हैं गोपियों के भावों में, और फिर वो कहने लगते हैं, ब्रज उपशम के द्वारा गोपियों को ले लेते हैं। यहाँ पर यत पादपांशु इत्यादि श्लोकार्थ गोपियों के, मान ले कि रास में नृत्य कर रहे हैं, गोपियों की चरण धूलि और कृष्ण की चरण धूलि उठ करके कहाँ जाएगी, सिर पर जाएगी, और कृष्ण अपने दुपट्टे से पीताम्बर से उनको, ये सखाओं के लिए संभव है, इसलिए उनको स्मरण कर रहे हैं उन लीलाओं का, और एकदम भीतर उस लीला में प्रवेश करके उनके लिए दृष्टम हो ब्रजऊ कुसाम, ब्रजऊ कुसाम का ये तात्पर्य है ब्रज में रहने वाले कौन, गोपियां।